आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज के संक्षिप्त समाचार वृषाली जैन के साथ। विक्टोरिया में आपातकालीन सेवाओं का कहना है कि मौसम की परिस्थितियों में आए बदलाव से अग्निशमन कर्मियों को कुछ राहत मिली है, लेकिन समुदाय के लिए खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है। राज्य में इस समय 1500 से अधिक आपातकालीन चेतावनियां और 17 वॉच एंड एक्ट नोटिस जारी हैं। इसके साथ ही 20 स्थानीय सरकारी क्षेत्रों में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। विक्टोरिया के कई हिस्सों में गंभीर स्तर की आग लगी हुई है। हालांकि दमकल कर्मियों का मुख्य ध्यान राज्य के मध्यम हिस्से में लगी एक बड़ी आग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लगी दूसरी आग पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी का कहना है कि प्रीमियर जेसिंटा एलन द्वारा घोषित 1,95,00,000 का सहायता पैकेज प्राथमिक उत्पादकों की पुनर्बहाली में मदद करेगा। विक्टोरिया की प्रीमियर जेसिंटा एलन ने उन सभी निवासियों की सराहना की है जिन्होंने निकासी के आदेशों का पालन किया है। वहीं उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन कोजी क्वींसलैंड के सुदूर उत्तरी इलाके में जमीन से टकराने के बाद अब कमजोर पड़ गया है। हालांकि ये मौसम प्रणाली अब भी भारी बारिश और तेज हवाएं ला रही है। क्वींसलैंड के प्रीमियर डेविड क्रिसोफिली ने कहा है कि बाढ़ का खतरा अब भी बना हुआ है। उन्होंने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सड़कों पर सतर्क रहने की अपील की है। अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्र के निवासियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि बोवन के ठीक उत्तर में पीटर्स फ्लैट के पास ब्रूस हाईवे को बंद कर दिया गया है। डेविड क्रिसोफिली ने स्थानीय सड़कों पर यात्रा करने वाले लोगों से अपील की है कि वे अन्य मैप सेवाओं के बजाय आधिकारिक आपदा वेबसाइट की जानकारी का इस्तेमाल करें। दूसरी ओर अगले महीने होने वाले एडिलेड राइटर्स वीक के लगभग 50 लेखकों ने अपना नाम वापस ले लिया है। ये कदम उस फैसले के बाद उठाया गया जिसमें महोत्सव ने फिलिस्तीनी ऑस्ट्रेलियाई लेखिका, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता रैंडा अब्दुल फत्ता को कार्यक्रम से हटाने का निर्णय लिया। एडिलेड फेस्टिवल बोर्ड ने गुरुवार 8 जनवरी को बताया कि 14 दिसंबर को बॉन्डाई बीच पर हुए सामूहिक गोलीबारी के बाद पैदा हुए राष्ट्रीय शोक और समुदाय में तनाव के कारण वे डॉक्टर अब्दुल फतेह की उपस्थिति के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका यह निर्णय किसी भी तरह से उनकी रचनाओं को उस त्रासदी से जोड़ने का संकेत नहीं है। इस फैसले के विरोध में स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई पुरस्कार विजेता लेखक जिनमें ट्रेंट डॉल्टन, हेलन गार्नर, जेरी स्मिथ और यानिस वरुफाकिस शामिल हैं, कार्यक्रम से हट गए हैं। ग्रीस के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके यानिस वरुफाकिस ने कहा कि ये घटनाक्रम निराशाजनक है। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया ने फ्लोरिडा में आयोजित वर्ल्ड क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में मिक्स्ड रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता जेसिका हल ने ओलिवर होअर, लिंडन हॉल और जैक एनस्टे के साथ मिलकर ये उपलब्धि हासिल की है। टीम ने 4-2 किलोमीटर चरणों की इस रेस को 22 मिनट 23 सेकंड में पूरा किया। ऑस्ट्रेलिया का समय फ्रांस से 3 सेकंड तेज रहा जबकि इथोपिया तीसरे स्थान पर रहा। यह इस प्रतियोगिता के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया का 5वां स्वर्ण पदक है। जेसिका हल का कहना है कि टीम के रूप में यह स्वर्ण पदक जीतना उनके लिए बेहद आनंददायक रहा है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या कम से कम 116 तक पहुंच गई है। ये जानकारी ऐसे समय सामने आई है जब सरकार ने इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल की सुविधा बंद कर दी है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के अनुसार अब तक 2600 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने कड़े कदमों के संकेत दिए हैं। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ चेतावनियां और तेज कर दी हैं। ईरान के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि प्रदर्शन में शामिल किसी भी व्यक्ति को ईश्वर का दुश्मन माना जाएगा। यह ऐसा आरोप है जिसकी सजा मृत्यु भी हो सकती है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी कर ईरानी प्रदर्शनकारियों के साहस की सराहना की है। मंत्रियों ने सुरक्षा बलों द्वारा घातक बल के इस्तेमाल की निंदा की और ईरानी अधिकारियों से अपील की कि लोगों को बिना किसी डर या बदले की आशंका के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार दिया जाए। और अंत में खबरें भारत से। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को लोकसभा में बजट 2026-27 पेश करेंगी। बजट से पहले की तैयारियां तेज है और इसी सिलसिले में वित्त मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वित्त मंत्रियों की अहम बैठक भी की। बैठक में राज्यों ने पूंजी निवेश बढ़ाने वाले विशेष सहायता योजना को जारी रखने पर जोर दिया। उनका कहना है कि इस योजना से परिसंपत्ति निर्माण तेज होता है और राज्यों में निवेश को बढ़ावा मिलता है। वित्त मंत्रालय के अनुसार राज्यों ने मांग की है कि इस योजना को बजट में अधिक आवंटन के साथ जारी रखा जाए। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और उन्हें बजट तैयार करते समय शामिल भी किया जाएगा। अब तक केंद्र सरकार इस योजना के तहत राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 4.25 लाख करोड़ रूपयों से अधिक की सहायता दे चुकी है। इसी के साथ 11 जनवरी 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। डीजे वृषाली को इजाजत, नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।